भगवान विष्णु कृष्ण की तरफ स्वतः खींचा चला जा रहा।
इसके बावजूद प्रहलाद महाराज जब भगवान से स्तुति करते हैं तो कहते हैं मैं इस जगत में फंस गया हूँ, मैं कभी सुखी हूँ कभी दुख का महसूस करता हूँ। लेकिन वास्तव में ये जो भक्त कहते हैं मैं दुखी हूँ, वे हमारी स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। भक्त कभी दुखी नहीं होते हैं। भक्तों को नरक भी मिल जाए तो वे वहां भी सुखी रहते हैं, वहां भी जाकर प्रचार करेंगे। हमारी सत्य घटना है कि प्रभुपाद महाराज जब रशिया में, रशिया कम्युनिस्ट देश है, और वहां पर प्रचार करना या धर्म का नाम लेना, आज से 10-12 साल पहले वहां इसको कानून के विरुद्ध समझा जाता था। लेकिन प्रभुपाद महाराज को थोड़ा सा समय मिला था और वहां एक पत्रकार से भेंट हुई और उन्होंने उसको भक्त बनाया और वे फिर चुपके चुपके प्रचार करते थे रशिया में। जब सरकार को पता चला कि ये लोग धर्म का और भगवान का प्रचार कर रहे हैं तो उनको जेल भेज दिया गया। तो वो भक्त जब जेल में गए तो जेल में भी जाकर प्रचार किया। भक्त एक गया और बाहर निकले तो चार जन निकले भक्त बने। तो भक्त जो होते हैं वे कहीं पर रहें वो दुखी नहीं होते हैं। लेकिन भक्त जो हैं समाज का नेतृत्व करते हैं, हमारा सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमारी स्थिति को प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में हम लोग इस जगत में दुख उठा रहे हैं फिर भी समझते हैं कि नहीं हम सुखी हैं। हम त्रिताप से पीड़ित हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं कि नहीं हम सुखी हैं। तो भक्त लोग कहते हैं हमको दिखा नहीं नहीं हम सुखी नहीं हैं। हम जो कहते हैं आहा मजा आनंद आ गया या हम सुखी हैं, वास्तव में हम स्थिति को नहीं जानते हैं। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, अगर इसको आप समझ जाएं तो समझ जाएंगे कि हम कैसे सुखी हैं। एक बार एक व्यक्ति वन में जा रहा था, अचानक उसके पीछे एक शेर पड़ गया। उसने देखा पीछे शेर है, वो भागा जोर से। तो भाग रहा था तब तक एक अंधा कुआ था। अंधा कुआ मतलब जहां कोई उपयोग नहीं होता है, उसमें पानी भी नहीं होता है। तो पीछे शेर था तो आगे तो कुछ देख नहीं रहा है, वो तो भाग रहा है। अचानक वो अंधा कुआ आया और उसमें गिर गया। लेकिन गिरते गिरते उस कुएं के किनारे पर एक वृक्ष खड़ा था और उसकी डाली ऐसा झुकी हुई थी, तो कुएं में गिरते गिरते उस डाली को पकड़ लिया। वो डाली कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, उसने पकड़ लिया तो बिल्कुल अंदर गिरने से बच गया। डाली को पकड़े रहा और अंदर देखा, कुएं में तो पानी नहीं है। तो क्या है, अंदर एक अजगर बैठा है कई दिन से भूखा और अपना मुंह खोले हुए। उसने देखा, बाप रे, और डाली को मजबूती से पकड़ा। गिर गए तो गए अजगर के मुंह में, तो मर गए। पकड़ा डाली को, अब नीचे तो देखा अजगर, नीचे देखने की हिम्मत नहीं होती, ऊपर देखा तो जिस डाली को पकड़ा था, यहां से डाली को पकड़ा और यहां से दो चूहे, एक काला चूहा एक सफेद चूहा, उस डाली को कट 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 काट रहे हैं। अरे बाप रे, इस डाली को काटा जा रहा है। अब ये डाली को काट रहे हैं, वो जैसे ही कट जाएगी वो जाएगा कुएं में, और कुएं में अजगर बैठा अजगर के मुंह। अब भयभीत हो गया, क्या करूं, बाहर निकल जाऊं तो बाहर देखा था वो शेर बैठा है। तो अब ऐसा झूला खा के बाहर भी नहीं भाग, बाहर भागा तो शेर तैयार बैठा है, शेर राह देख के बैठा है कि कब ये बाहर आ। अब वो कहां जाए, कुएं में अजगर बैठा है मुंह फाड़ के, ऊपर जिस डाली को पकड़ा है उसको चूहे काट रहे हैं, और कुएं के किनारे पर शेर बैठा है। कितनी स्थिति गंभीर है। लेकिन ऐसे में देखते देखते उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो ऊपर डाली पे एक मद बैठा था, और उस मद में से कभी कभी मद की बूंद गिरती थी। उसने देखा मद कूड़े में से मद चू रहा है, तो वो भूल गया कि अजगर बैठा है, वो भूल गया कि शेर बैठा है, वो भूल गया कि चूहे डाली काट रहे हैं। अब वो मद, तो वो बूंद गिर रही है उस पर वो ध्यान से देख रहा है कि ये बूंद कहां गिर रही है, और अपने मुंह को उस बूंद के मेरे मुंह में गिरे इसके लिए वो एडजस्ट कर रहा है मुंह को कि ये बूंद मेरे मुंह में गिर जाए, और मुंह को एडजस्ट करके रखा, और अचानक थोड़ी देर में एक बूंद गिरी और उसके मुंह में आई। आहा, मजा आ गया मूर्ख, क्या मजा आ गया, एक मद की बूंद तेरे मुंह में गिरी, मजा आ गया। वो अजगर नहीं दिख रहा है, वो डाली चूहे काट रहे नहीं दिख रही है, वो शेर बैठा है नहीं दिख रहा है, और एक बूंद मद की गिरी तो मजा आ गया। ये मूर्ख लोग संसार में कहते हैं आहा टीवी पे क्या प्रोग्राम था, मजा आ गया, काल राह देख रहा है अजगर के रूप में, क्या मजा आ गया, मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है और बोलता है मजा आ गया, शेर रूपी बुढ़ापा तुम्हारे सामने खड़ा है किनारे पे, पूछो किसी बुढ़े व्यक्ति से क्या परिस्थिति होती। बुढ़ापे को शेर कहा गया है, क्यों? आदमी जब जवान होता है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर था, जवान था तो पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन बुढ़ापा आया तो उसको हिला दिया। कितना भी शक्तिशाली दादा हो, बड़ा शक्तिशाली आदमी हो, लेकिन बुढ़ापा आता है तो पलंग में गिर ही जाता है, हाथ में लाठी लेना ही पड़ता है, पलंग में बैठ बैठे खांसता रहता है, सब कोसते रहते हैं बहू और बच्चे कब मरेगा बुढ़ा, आप मुंह में से कप गिरता है ये बुढ़ा बात। तो शेर जो होता है उससे भल भले कांप जाते हैं, है ना, कितना भी बड़ा दादा है, कितना भी दुनिया को डराने वाला, लेकिन सामने शेर आ जाए तो वो कांप जाएगा। इसी प्रकार कैसा भी व्यक्ति है, कितना भी शक्तिशाली है, लेकिन बुढ़ापा आए यार उसको हिला देगा। तो ये शेर रूपी बुढ़ापा तो हमारी राह देख रहा, और कुएं में अजगर मुंह फाड़े बैठे, ये अजगर क्या है? इस काल को अजगर कहते हैं, सांप, हम सब अजगर के मुंह में हैं। प्रभु जी बता रहे थे एक साल और मृत्यु के निकट चला गया। सांप जो होता है जब मेंढक को पकड़ता है तो पूरा पूरा नहीं गलता है, पहले थोड़ा पकड़ लेता है मजबूती से, फिर 10%, 15%, 20%, 40%, 50%, 60%, फिर गबंधन। आ रही है इन बात समझ में? सांप मेंढक को, तो ये मृत्यु रूपी सांप हमको गल रहा है, कितना हुआ? 10 साल। और 11वां साल होता है हैप्पी बर्थडे, क्या हैप्पी बर्थडे, 11% तो अंदर चले गए हो, और 15% ज्यादा फिर हैप्पी बर्थडे, क्या हैप्पी बर्थडे, तुम 15% अंदर चले गए हो काल के मुंह में। और वो मेंढक सांप पकड़े रहता है, धीरे धीरे गलता है, लेकिन मेंढक आंख से देखता है दूसरा शिकार भोग के लिए कोई है। इधर 30 साल काल के मुंह में चला गया, हमारा 30 साल कहां गया? जो 40 साल का है उसका 40 साल कहां है? काल के मुख में गया, लेकिन आंखें देख रही है। टीवी में कौन सा प्रोग्राम है आज? सिनेमा कौन सा लगा है? कौन सा बियर बार? वो मेंढक सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेंढक दूसरे जीवों को देखता है, कोई आए तो मैं खा लूं। अरे तुम खाए जा रहे हो, अपनी कुछ सोचो, तुम दूसरे को खाने की सोच रहे हो। इस प्रकार हम काल के मुख में दिन ब दिन जा रहे हैं, फिर भी हमारी नजर संसार के विषय भोगों पर। ये काल मृत्यु रूपी अजगर, ये डाली को काट रहे हैं चूहे, ये क्या दिन और रात हमारी उम्र रूपी डाली को काट रहे हैं। जैसे डाली है इतनी मोटी, आधा काट दिया, 50 साल के 40 साल हो गया, तो समझना चाहिए कि ये आधी डाली कट गई, अब आधी बाकी है, गिरेगी। तो 51 साल आता है हैप्पी बर्थडे, क्या हैप्पी बर्थडे, अभी वो डाली कट गई गिरने वाले हो, क्या हैप्पी बर्थडे। तो क्या करें, कभी कभी आदमी सोचता है, अरे इतना साल हो गया, अब हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे संबंधियों का क्या होगा, अरे मूर्ख तेरा क्या होगा, वो तो सोच पहले, तेरा क्या होगा, तू कहां जाएगा। जब मौत आ जाएगी तब तेरा क्या होगा, व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो अंततः एक दिन ये सब छूटने वाला है, हमारा गति क्या होगा उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे जीवन का गति क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं ये शरीर छोड़ने के बाद, ये परिवार छोड़ने के बाद, ये संसार छोड़ने के बाद मेरी क्या गति होगी, उसको बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति महाराज दशरथ थे, तो एक दिन बैठे थे और मुकुट ठीक कर रहे थे, तो मुकुट कांच में देखकर ठीक कर रहे थे, तो कान के पास एक सफेद बाल देखा, तुरंत ही मुकुट उतार के रख दिया और सीधे गए वशिष्ठ जी के पास, अपने गुरु के पास। कहा, गुरुदेव ये एक सफेद बाल आ गया, अर्थात मेरी उम्र चली जा रही है और अभी तक मेरा भजन नहीं हो रहा है। ये है महाराज, एक कान के पास सफेद बाल आने से उनको चिंता लग गया कि ओहो उम्र तो बीता जा रहा है और भजन नहीं हो रहा है, भगवत प्राप्ति कब होगा, कब हमारा कृष्ण से मिलन होगा, कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति कब होगी, ये जीवन चला जाएगा, तो ये चिंता होनी चाहिए। लेकिन हम लोग इसका चिंता नहीं करते। हमारे संत लोग कहा करते थे कि व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए कम से कम। एक साल बीत गया, एक साल कहां बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, एक साल कहां बीता है, और अभी तक हमारा भजन नहीं हो रहा है, अभी तक हमको भगवत चरण कमल की कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, अभी तक हमको ये भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं भगवान से कितना दूर हूं। हे प्रभु, कब आपसे हमारा मिलना होगा, उनके विरह की कोई हमको वेदना नहीं हो रही, संसार के विरह की वेदना होती है, भगवत विरह की वेदना नहीं। जो संसार, जो वस्तुएं अनित्य हैं, जो संबंध अनित्य हैं, जो मात्र, जो भी आप इस संसार की विषय को लेते हैं उसका परिणाम मात्र दुख है, उसके विषय में हम विचार करते हैं। लेकिन हमारे जो अपने भगवान कृष्ण, जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ हमारा नित्य सनातन संबंध है, उनके विरह के लिए हमारा कोई विचार नहीं होता। ये सबसे बड़ी मूढ़ता है। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भगवान से मैं बहुत दूर हूं, और समय दिन भर दिन, महीने साल बीते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवत स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान के चरणों में कोई प्रीति नहीं हो रही है, भगवान के नाम में कोई मेरा अनुराग नहीं हो रहा है, इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए। कैसे भगवान के नाम में मेरा अनुराग होगा, कैसे भगवान चरण कमलों के प्रति मेरे सेवा करने की इच्छा होगी, और कैसे मेरे जीवन के अंत में मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊंगा, इस विषय में विचार करना चाहिए। और इसके लिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, सत्संगी जीवन बहुत आवश्यक है, संत पुरुषों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से आप सबको यह दुर्लभ सत्संग सुलभ हो रहा है कुछ भक्तों के प्रयास से। तो हमें इस सत्संग में जाकर, भगवान के कीर्तन कथा में जाकर इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे आज तो प्रोग्राम में बहुत भक्त आए हैं, लेकिन देखेंगे कि अगले शनिवार को इसके 50% भी नहीं आए। ये सत्संग, ये भजन, ये सत्संगी जीवन अहरनिश चलना चाहिए। अप्रतिहता, बिल्कुल रुकावट के बिना ये धारावाहिक चलना चाहिए। प्रति शनिवार सत्संग में जाना है, जाना है। प्रति रविवार को मंदिर जाना है, जाना है। एक नियम होना चाहिए। हमको प्रातः उठकर भगवान के नाम का जप स्मरण करना है तो 1 घंटा करना है, गीता पढ़ना है तो पढ़ना है। इस प्रकार जीवन को नियम में बनाना चाहिए। एक गुजराती में कहावत है कि नियम वगरनू जीवन अने वाड़ वगरनू खेतर नकामू छे। अगर हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है तो ऐसा समझना चाहिए कि बाड़ बिना का जो खेत होता है उसके जैसा है, उसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जीवन में नियम बनाना चाहिए। भक्तों के संग में रहकर, गीता भागवत पढ़कर, सत्संग लेकर हमें जीवन में नियम बनाना चाहिए कि नहीं, प्रतिदिन मेरे लिए 24 घंटे जो प्रभु ने दिए हैं, 24 घंटे में मैं 2 से 3 घंटा कृष्ण के लिए दूंगा, मेरे आत्मा का मंगल करने के लिए दूंगा, और फिर 21 घंटे तो आपके हैं ही। कुछ लोग कहते हैं हम भजन करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। अरे 21 घंटा करो जो करना है, 2 से 3 घंटा तो भगवान की कथा कीर्तन में लगाओ, अरे कम से कम 2 घंटा तो लगाओ। थोड़ा नींद कम करो, थोड़ा रात का टीवी देखना बंद करो, आराम से उठेंगे, सत्संग मिला क्यों नहीं मिला। अगर हम करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन हम ही नहीं जाग रहे हैं। अतएव भक्त लोग बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, इस प्रकार की योजना बनाते हैं, सत्संग रखते हैं, कीर्तन रखते हैं। भक्त लोग अपना समय, कीमती समय निकाल कर कठोर परिश्रम करके आते हैं दूसरे जीवों पर कृपा करने के लिए। तो हमको इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए, हमारे जीवन को भी सत्संगी जीवन और भक्तिमय जीवन बनाना चाहिए, नियमावली के अनुसार जीवन बनाना चाहिए, और इस मनुष्य जीवन को इस प्रकार भगवान की भक्ति करके, भगवान के भक्तों के संग में रहकर, सत्संग में रहकर इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये नव वर्ष में एक प्रतिज्ञा करना चाहिए। लेखा जोखा रखना चाहिए, पिछले वर्ष मेरा भजन कितना हुआ, मैं भगवान से इतना दूर था कितना नजदीक गया, मैं पिछले साल 2 माला करता था, अब ये साल 3-4 करूंगा या 6 करूंगा। इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति में भी रुचि दिखाना चाहिए, और ये सब भक्तों के संग के द्वारा ही संभव हो सकता है। अतएव आप भक्तों के संग में आइए, प्रति शनिवार यहाँ पर यह सत्संग होता है, रविवार को आपके पास में ही मीरा रोड मंदिर में सत्संग होता है। वहां आपको अपने जीवन को आप कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सत्संगी और भजनमय बना सकते हैं, इसके लिए पूरा आपको लाभ दिया जाता है, तो आप आइए सत्संग में, आइए मंदिर आइए और अपने जीवन के लक्ष्य को जानिए और उसमें प्रवर्तक होइए। हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा बिहारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, गौर निताई की। तो आप सभी को पुनः में एक बार नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और राधा गिरधारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबका नव वर्ष सत्संग की और भक्तिमय हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी प्रभु जी थोड़ा कीर्तन करेंगे और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद करेंगे।
Yeah, well.